समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल के मैदान की गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को भी हम करेंगे याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या फिर जन्मदिवस। परिक्रमा के आज के इस अंक के साथ मैं हूं मुदिता और मेरे साथ हैं मेरे को होस्ट वीसी प्रमोद। प्रमोद, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार मुदिता, एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल यू वंडरफुल लिसनर्स हु आर ट्यून्ड इन टू परिक्रमा 100.1 एफएम गोल्ड। एंड एज मुदिता राइटली सेड, वी हैव फॉर यू अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, आर डिस्कशन सेगमेंट, डेटलाइन इंडिया, रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर, ऑल दीज ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। बट वी बिगिन विद द न्यूज हेडलाइंस फर्स्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नए तथ्यों से स्पष्ट होता है कि किस तरह कांग्रेस ने बड़ी आसानी से कच्चा थीवु द्वीप श्रीलंका को सौंप दिया था।
प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू कन्फर्स इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न ऑन फॉर्मर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर लाल कृष्ण आडवाणी इन न्यू दिल्ली।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, वर्तमान वित्तीय वर्ष की चौथी तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 8% से भी अधिक वृद्धि का अनुमान।
And in IPL cricket, the match between Sunrisers Hyderabad and Gujarat Titans is underway. The second match between Delhi Capitals and Chennai Super Kings in Vishakhapatnam to start at 7:30 PM. And now, time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. Today, we will talk about Election Commission's C-Vigil app and celebration of Easter. The C-Vigil app of the Election Commission of India is part of Election Commission's steps to leverage digital technology to ensure free, fair and inducement-free polls. The C-Vigil app has become an effective tool in the hands of the people to flag election code violations. Since the announcement of general elections 2024, over 79,000 complaints have been received so far. Over 99% complaints have been resolved and close to 89% of these complaints have been resolved within 100 minutes. Speed and transparency are the cornerstones of C-Vigil app. More than 58,500 complaints, 73% of the total received, are against illegal hoardings and banners. More than 1,400 complaints have received pertaining to money, gifts and liquor distribution. Close to 3% of the complaints, 2,454, pertain to defacement of property. Out of the 535 complaints received for display of firearms and intimidation, 529 have already been resolved. 1,000 complaints reported were for campaigning beyond the prohibited period, including use of speakers beyond permitted time.
सी विजिल ऐप चुनावी निगरानी और अभियान की अव्यवस्था को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। आम चुनाव 2024 की घोषणा के लिए आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार ने नागरिकों से सतर्क रहने और आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन व मतदाताओं को किसी भी प्रकार का प्रलोभन दिए जाने की जानकारी देने के लिए इस ऐप का उपयोग करने का आग्रह किया था। सी विजिल उपयोगकर्ताओं के अनुकूल और संचालित करने में आसान एप्लीकेशन है, जो सतर्क नागरिकों को जिला नियंत्रण कक्ष, रिटर्निंग अधिकारी और उड़न दस्ता टीमों से जोड़ता है। इस ऐप का उपयोग करके नागरिक राजनीतिक कदाचार की घटनाओं की जानकारी कुछ ही मिनटों के भीतर दे सकते हैं और उन्हें रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही शिकायत सी विजिल ऐप पर भेजी जाएगी, शिकायतकर्ता को एक यूनिक आईडी प्राप्त होगी, जिसके माध्यम से वह अपने मोबाइल पर अपनी शिकायत की अद्यतन स्थिति के बारे में जान सकेगा।
A trinity of factors working simultaneously makes C-Vigil a success. Users capture audios, photos or videos in real time and a 100-minute countdown for time-bound response to complaints is ensured. The app automatically enables a geotagging feature as soon as the user switches on their camera in the Sea Vigil to report a violation. This means that flying squads could know the precise location of a reported violation, and the image captured by citizens could be used as evidence in the court of law. Moving on to Easter, the festival of Easter is being celebrated all over the world today, marking the faithful belief that Jesus rose from the dead after being crucified. Midnight Easter prayers were held at various churches across the country last night. Joining the rest of Christians around the world, Nagaland is also celebrating Easter Sunday as churches across the state are organizing special Easter services to offer Thanksgiving prayers. Here's more from our correspondent.
Believers from the Christian community were seen thronging to their respective churches this morning to attend the special services and to seek blessings from the Almighty by participating in the Holy Communion. Many people are also baptized on this day. The day also marks the breaking of the fasting of the believers for days. Earlier in the morning, under the aegis of Kohima Baptist Pastors Fellowship, citizens of the capital city Kohima gathered at the historic The Heritage, the old DC bungalow in Kohima, to attend the Easter sunrise service, singing hymns and offering thanksgiving prayers. On the occasion, Governor Laganesan called upon all to celebrate the testament of God's love to humanity and the spirit of forgiveness. Chief Minister Nifio Rio said, "Jesus' greatest act of love on Good Friday is followed by the greatest act of power on Easter Sunday, which is his resurrection." With Asunwo's report from Kohima, Anuja Kumar, Akashwani News, Delhi.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईस्टर के अवसर पर भारत और विदेश में रहने वाले नागरिकों, विशेषकर ईसाइयों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा, यह त्यौहार ईसा मसीह के पुनरुत्थान के साथ ही प्रेम और करुणा का भी प्रतीक है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी लोगों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की याद में मनाया जाने वाला ईस्टर का त्यौहार प्रेम, करुणा और क्षमा के गहन प्रभाव की मार्मिक याद दिलाता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी को ईस्टर की शुभकामनाएं दी। श्री मोदी ने कहा कि हमें उम्मीद है कि नवीकरण और आशावाद का संदेश हर तरफ गूंजेगा। उन्होंने कहा कि ये दिन हम सभी को एक साथ आने के लिए प्रेरित करता है। और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या है खास।
That's right, elections in the five constituencies in the Union Territory of Jammu and Kashmir are going to be held in five phases on 19th April, 26th April, 7th May, 13th May and 20th of May. The JNK has a total of five parliamentary constituencies. Out of these five constituencies, two are located in Jammu Division and three fall in Kashmir Division. More from our Jammu correspondent.
The four Udhampur parliamentary constituency is the most developed constituency in India and it has seen tremendous development in the last 9 years. This constituency covers 20,230 square kilometers of mountainous Himalayan terrain. The constituency covers five districts of Jammu Division including Kathua, Udhampur, Doda, Kishtwar and Ramban. The population of the parliamentary constituency is over 24 lakhs and there are a total 16,74,277 electorates in the constituency. Of these, 8,26,218 are males and 8,48,059 females. The constituency has 18 assembly segments and 2,637 polling stations. This constituency has earned its name in the country and world as the birthplace of purple revolution, which has given birth to agri-tech startup not only in J&K but across India. The last date of filing of nomination paper by the candidates or their proposers for the parliamentary constituency was March 27, 2024 and the scrutiny of the nomination papers was done on March 28. The candidates have the option to withdraw their candidature on March 30, 2024. In all, 15 candidates, including Dr. Jitinder Singh and Prem Nath from Bharatiya Janata Party, Amit Kumar and Tilak Raj from Bhojan Samaj Party, former Minister G.M. Saruri from Democratic Progressive Azad Party, DPAP, former Minister Chaudhary Lal Singh and Divya Suraj Pratap Singh from Indian National Congress, Rajesh Manchanda from Rashtriya Krantikari Samajwadi Party, Sachin Gupta from from Inkalab Vikas Dal, IVD, Manoj Kumar from Ekam Sansthan, Bharat Dal, Balwan Singh from J&K National Panthers Party, and Muhammad Ali Gujjar, Swaranveer Singh Jaral, Maharaj Deen, and Dr. Pankaj Sharma as independent candidates have filed their nomination papers. After thorough scrutiny of nomination papers on 28th of March 2024, the candidature of three candidates including Prem Nath from BJP, Tilak Raj from BSP and Divya Suraj Pratap Singh from INC was rejected due to various reasons. However, on 30th March 2024, the day of withdrawal of candidature, no candidate has withdrawn his candidature and now there are 12 candidates from different political parties and independent in fray for the 4th Udhampur parliamentary constituency, polling for which is scheduled in the first phase on April 19, 2024 from 7 a.m. to 6 p.m. The other parliamentary constituencies of J&K, that is Jammu Riyasi seat, will have voting in the second phase on April 26, Anantnag Poonch Rajouri in third phase on May 7, Srinagar in fourth phase on May 13 and Baramula in fifth phase on May 20. This is N. Gulshan Rana for Parikrama from Jammu.
हिमाचल प्रदेश पर्यटन राज्य के रूप में देशभर में विशेष पहचान रखता है। पर्यटन के विकास के लिए राज्य सरकार ने कई पहल की हैं। आइए इन पहलों के बारे में जानते हैं हमारे शिमला संवाददाता से।
हिमाचल प्रदेश की पर्यटन राज्य के रूप में देश भर में विशेष पहचान है। यहाँ के अनछुए पर्यटन स्थल सभी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। पर्यटन विभाग द्वारा राज्य में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इन दिनों विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित की जा रही हैं। इसी कड़ी में विभाग द्वारा कुल्लू जिला के बंजार उपमंडल के जीभी घाटी में चल रहे पर्यटन विकास एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किए जा रहे शोभला सराज उत्सव में लोगों की खूब भीड़ है। इस दौरान जलोड़ी पास में भारी बर्फबारी के बीच स्की माउंटेनियरिंग ओपन चैंपियनशिप भी आयोजित की गई। इस राष्ट्रीय स्तर की स्की माउंटेनियरिंग ओपन चैंपियनशिप में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और भारतीय सेना की टीमों के 27 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कुल्लू जिला प्रशासन द्वारा पर्यटन विभाग के साथ जिले के अनछुए पर्यटन गंतव्य विकसित करने व साहसिक खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए ऐसे कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस दौरान जीभी में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम व फूड फेस्टिवल भी आयोजित किया गया। इसमें स्थानीय महिला मंडलों द्वारा प्रस्तुत किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रमों व परोसे गए व्यंजनों का पर्यटक खूब लुत्फ उठा रहे हैं। शोभला सराज उत्सव के दौरान लोकतंत्र के महापर्व लोकसभा के आम चुनावों में मतदाताओं की शत प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य चुनाव आयोग द्वारा स्वीप गतिविधियों के अंतर्गत लोगों को मतदान के महत्व की जानकारी भी दी जा रही है। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी शिमला से रितेश कपूर।
In view of the upcoming Lok Sabha elections, we present you a capsule based on state profile giving details of number of phases, date of polling, number of seats and other relevant facts by our correspondent. First, let's go to Madhya Pradesh.
In Madhya Pradesh, the picture of the contest on 25 out of 29 Lok Sabha seats has almost become clear. BJP has declared its candidate on all the seats. Congress has not yet declared its candidate on 3 seats. The party has left 1 seat for the Samajwadi Party. The BJP has given a chance to new faces on 11 seats, while Congress has fielded new candidates on 18 Lok Sabha seats. There are also 7 seats where the contest between new candidates of both the parties. Bharatiya Janata Party has given tickets to 6 women, while Congress has fielded 1 woman candidate so far. In Madhya Pradesh, about 1 crore 12 lakh voters will choose their representatives on 6 seats in the first phase, and more than 1 crore 3 lakh voters will choose their leaders on 7 seats in the second phase. In the third phase, 1 crore 60 lakh voters will cast their vote for 8 Lok Sabha seats, while in the fourth and final phase, more than 1.5 crore voters will cast their votes for the 8 Lok Sabha seats. Sanjeev Sharma, Akashwani News, Bhopal.
Voting for the 2 Lok Sabha seats in Goa will take place on the 7th of May. The state of Goa is in phase 3 as per the schedule of the Election Commission of India. More from our correspondent.
Goa has total of 11.72 lakh registered voters, of which 5.78 lakh are in North Goa district and 5.93 lakhs are in South Goa district. Of these 11.72 lakhs voters, 6 lakh plus are the female voters, while 5.7 lakh odd are the male voters, with the gender ratio of 1063, which is remarkable in the country. Goa has two parliamentary seats, North North Goa seat, which is currently represented by 5-time MP and Union Minister of State for the Tourism, Ports, Shippings and Waterways, Sripad Naik from the BJP, and the South Goa seat represented by Francisco Sardinia of Congress. The Election Commission has added more than 25,000 new voters in the age group of 18 to the 19 years and tried to ensure that each person who was added to the list will come out and cast their vote. As per the information provided by the Chief Electoral Office of Goa, all polling stations in Goa will house shades, drinking water, sanitation facilities, ramps, wheelchairs and help desks. Also, the security arrangements to conduct the free and fair elections are ensured by the Election Commission of India. Tushar Jadhav, Akashwani News, Panaji, Goa.
Now we'll take you on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
The Social and Religious Reformation Movement, Prarthana Samaj or Prayer Society, was founded on the 31st of March 1867 in Bombay. It was guided by R.G. Bhandarkar, a noted Sanskrit scholar, Atmaram Pandurang, Narayan Chandavarkar and Mahadev Govind Ranade. The main reformers were the intellectuals who advocated reforms of the social system of the Hindus. The movement was spread to South India by Telugu reformer Andhra Kesari V.
Prarthana Samaj critically examined the relations between contemporary, social and cultural systems and religious beliefs and gave priority to social reform as compared with the political changes already initiated by the British government. The two main planks of the Samaj were worship and social reforms.
Ranade was a revivalist who pointed out that most of the prevailing evil customs ran counter to the practices observed in earlier times. Two other champions of social reform with him were Dhundu Keshav Karve and Vishnu Shastri. Ranade and Karve launched the widow remarriage movement and started Widows Home Association to provide education to widows. In no other part of India did the social reform movement work so successfully and create so profound an influence as in Maharashtra under the auspices of the Prarthana Samaj.
We remember freedom fighter Chima Sahib, who was arrested by the British authorities on the 31st of March 1858, son of Maharaja Bhau Sahib, ruler of the Kolhapur state. Chima Sahib was one of the prime movers of the uprisings in 1857 in the Kolhapur state during the first war of India's independence.
During the First War of Independence, he held secret talks with the leaders of the 27th Native Infantry Regiment of the English East India Company Army and also made secret overtures to a few Indian princes and independence leaders. He received emissaries from Nana Saheb Peshwa and as a token of comradeship in arms, a silver-handled sword was sent to him from the Lucknow Darbar. He succeeded in rallying a large number of independence activists in Kolhapur, which posed a serious threat to the British in the region. The British authorities arrested him and sent him to Bombay, from where he was deported to Karachi. He was detained in Karachi for 11 years till his death on the 15th of May 1869. We salute the great freedom fight.
We also remember martyr Nadir Shah, who participated in the First War of Indian Independence in Gujarat. He was captured and sentenced to imprisonment for life with labor in irons on the 31st of March 1858. He was transported to the Andaman Islands in March 1859 and he died there in detention on the 12th of April 1859. We salute the great son of the soil.
We also remember Indian National Army member D. James. Initially a member of the British Indian Army in Malaya, James joined the Indian National Army in 1942 and served as Lance Nayak. He fought the British forces on several occasions and died in action in Myanmar on the 31st of March 1944. We salute the great martyr. That brings us to the end of this episode.
अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहाँ की हलचल.
That's right. In IPL cricket, Sunrisers Hyderabad were 132 for 5 in 16.3 overs against Gujarat Titans at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad when reports last came in. Sunrisers Hyderabad have won the toss and decided to bat.
और दूसरे मुकाबले में शाम 7:30 बजे विशाखापट्टनम के वाईएस राजशेखर रेड्डी स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे.
Moving on to tennis and Miami Open tennis, unseeded American player Danielle Collins has won the women's singles title. In a major upset, Collins defeated fourth-seeded Elena Rybakina of Kazakhstan in straight sets 7-5, 6-3 in the women's singles final in Florida this morning. In men's singles, second-seed Yannick Sinner of Italy will face 11th-seed Bulgarian player Grigor Dimitrov in the men's singles final tonight. Earlier, Indian tennis star Rohan Bopanna and his Australian partner Matthew Ebden clinched a historic victory in the men's doubles final yesterday. The duo defeated Croatia's Ivan Dodic and American Austin Krajicek 6-7, 6-3, 10-6. The 44-year-old Bopanna became the oldest man to win an ATP Masters 1000 title and the second Indian to reach the finals of all 9 ATP Master 1000 events. With this win, he has also regained the top spot in the ATP rankings.
और अब समय है उन व्यक्तित्वों को याद करने का जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या फिर जन्म दिवस.
चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था, सरे राह चलते चलते.
टुडे इज द शिक्षा एनिवर्सरी
उसके.
Today is the death anniversary of Mahjubeen Bano, who we popularly know as Meena Kumari. She was born on the 1st of August 1933 and she died on this day in 1972. She was an Indian actress and poet who worked in Hindi films. She was known as the Tragedy Queen and is regarded among the finest and greatest actresses in the history of Indian cinema. In a career spanning 33 years, from child actress to adult, Kumari starred in about 90 films altogether. She won 4 Filmfare Awards in the Best Actress category. She was recipient of the inaugural Filmfare Best Actress Award for Baiju Bawra and had a consecutive win in the second Filmfare Awards 1955 for Parinita. And in the 13th Filmfare Awards in 1966, she won her last Best Actress Award for Kajal. Critics have noted that her character in Sahib Bibi aur Ghulam is similar to her own personal life.
वो सैया चुड़ा के मैया कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी मजल रहा है सुहाग मेरा जो तुम न होगे तो क्या करूंगी क्या करूंगी.
प्रमोद, ये हिंदी फिल्मों के सबसे मार्मिक और त्रासद किरदारों में से एक था. छोटी बहू का जो किरदार उन्होंने निभाया था साहब बीवी और गुलाम में, जिस शिद्दत से निभाया था वो आज भी हम सबके जहन से निकला नहीं है.
And it's quite amazing that उनके पर्सनल रियल लाइफ के भी बारे में था, बिकॉज एट द एंड ऑफ हर करियर शी स्टार्टेड टेकिंग टू अल्कोहल एंड उसी की वजह से उनका देहांत भी हुआ.
लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ में ही वो एक शायरा भी थी और अपनी कई फिल्मों में उन्होंने खुद के लिए गीत भी गाए थे. तो आइए सुनते हैं हम मीना कुमारी की लिखी एक गजल उनकी ही आवाज में.
चांद तन्हा है आसमां तन्हा, चांद तन्हा तन्हा है आसमां तन्हा दिल मिला है कहां कहां तन्हा दिल मिला है कहां कहां तन्हा
On 31st March 1972, Meena Kumari died at the very young age of 38 from cirrhosis of the liver, which has been associated with her alcoholism. But a good thing about that was 1957, her film Sharda with Raj Kapoor gained great critical success and was the highest grossing film at the Indian box office. We have a song from that film.
और आज अमेरिका के महान एथलीटों में शुमार किए जाने वाले जेसी ओवेंस की पुण्यतिथि है। 1936 के बर्लिन ओलंपिक में जो नाजी जर्मनी में नस्लीय भेदभाव के कारण उपजे तनावपूर्ण माहौल में आयोजित किए गए थे, उसमें ओवेंस ने एथलेटिक्स में 4 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा था।
Today is the birthday of Sujata Mohan. She's an Indian playback singer who's popular for singing in Malayalam, Tamil and Telugu films. She's also sung in Kannada, Badaga, Hindi and Marathi films, and she sung more than 15,000 songs in her career. She shot to fame in the 70s as Baby Sujata, the schoolgirl who regularly used to sing with KJ Yeshudas in the stage shows all over the world. She recorded her first song, Kannayudhi Pottum Tottu, where she was in the 6th standard. We have that recording. Let's listen to that.
Kannayudhi Pottum Tottu Kallu Mala Chattiyappot Chandangali Kooli Nindu Nalum Oru Kalyana Pennindu Nalum Kannayudhi Pottum Tottu Kallu Mala Chattiyappot Chandangali Kooli Nindu Nalum
और आज जयंती है भारत की पहली महिला डॉक्टर डॉक्टर आनंदी गोपाल जोशी की। 1865 में आज ही के दिन उनका जन्म हुआ और केवल 9 साल की उम्र में शादी हो गई। 14 साल की उम्र में आनंदी ने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया, लेकिन सही इलाज न मिलने के कारण 10 दिन बाद बच्चे की मौत हो गई। इस घटना ने आनंदी को डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। उनके पति ने भी उनका हौसला बढ़ाया और तमाम चुनौतियों और बाधाओं को पार करके 1886 में उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका से पश्चिमी चिकित्सा की पढ़ाई पूरी की और डॉक्टरी की डिग्री हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। इसी साल भारत वापस आकर उन्होंने कोल्हापुर में महिला डॉक्टर के रूप में चार्ज लिया, लेकिन कुछ समय बाद उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और केवल 22 वर्ष की उम्र में उनका देहांत हो गया। जिस उद्देश्य से उन्होंने डॉक्टरी की डिग्री ली थी उसमें वे पूरी तरह सफल तो नहीं हो पाई, लेकिन जिस दौर में महिलाओं के लिए शिक्षा प्राप्त करना भी मुश्किल था, तब विदेश जाकर डॉक्टरी की डिग्री हासिल करके उन्होंने एक मिसाल कायम की। गूगल ने 31 मार्च 2018 को उनकी 153वीं जयंती पर उन्हें खास डूडल बनाकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। और प्रमोद, शुक्र ग्रह वीनस जिसे भोर का तारा भी कहा जाता है, उसके गड्ढे यानी क्रेटर का नाम डॉक्टर आनंदी गोपाल जोशी के नाम पर जोशी क्रेटर रखा गया है।
दैट्स इंटरेस्टिंग। टुडे इज आल्सो द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु अंगद देव। He was the second of the 10 Sikh gurus of Sikhism. After meeting Guru Nanak, the founder of Sikhism, becoming a Sikh and serving and working with Nanak for so many years, Nanak gave Lehna the name Angad, my own limb, and chose Angad as a second Sikh guru. After the death of Guru Nanak in 1539, Guru Angad led the Sikh tradition. He is remembered in Sikhism for adopting and formalizing the Gurmukhi alphabet. He began the process of compiling the hymns of Nanak and contributed 62 or 63 shlokas of his own.
Jis pyare se hone ho Jis aake har chali hai Ek jeevan sansaar
Aaj Bharat ki पहली महिला ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी का जन्मदिन है। 31 मार्च 1987 को आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में जन्मी हम्पी को बचपन से ही शतरंज से लगाव रहा और 2002 2002 में 15 साल की उम्र में वो ग्रैंड मास्टर बनने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी और साथ ही ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल करने वाली दुनिया की 8वीं महिला। तो श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे इजाजत लेने का, तो मुदिता और वीसी प्रमोद को अनुमति दीजिए परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की।
नमस्कार, नमस्कार।